एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम चल रहे हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम तो हम सब ने सुना है, बेबीलोनिया।
बेबीलोनिया, हाँ, नाम सुनते ही हैंगिंग गार्डन्स, बाबिल की मीनार, ऐसी चीजें जहन में आती हैं ना?
बिल्कुल। लेकिन आज हम इन किस्सों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सभ्यता असल में क्या थी।
और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं ट्रेवर ब्राइस के काम का। वो एक जाने माने इतिहासकार हैं।
हाँ, ट्रेवर ब्राइस, प्राचीन निकट पूर्व पर उनका काम कमाल का है। और पता है, ये विषय आज भी बहुत जरूरी है।
कैसे? मतलब हजारों साल पुरानी बात आज कैसे प्रासंगिक है?
अरे, बेबीलोनिया ने कानून, सरकार चलाने के तरीके, विज्ञान, यहां तक कि हम जो समय मापते हैं ना, 60 मिनट, 60 सेकंड, इन सब पर अपनी छाप छोड़ी है।
अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी बेबीलोनिया को सिर्फ उन पुरानी कहानियों और खंडहरों से बाहर निकालना।
हाँ, और उसे एक जीती जागती, सोचने समझने वाली सभ्यता के तौर पर समझना,
हाँ,
देखना कि उसका आज हमसे क्या लेना देना है।
तो फिर शुरू करने से पहले थोड़ा ट्रेवर ब्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों उनका नजरिया इतना अहम है बेबीलोनिया को समझने के लिए?
देखिए, ट्रेवर ब्राइस सिर्फ वो किताबी कीड़ा टाइप इतिहासकार नहीं है। वो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल से ज्यादा दिए हैं।
40 साल
हाँ,
किस चीज पर?
प्राचीन मेसोपोटामिया और एनाटोलिया की सभ्यताओं पर, खास तौर पर बेबीलोनिया और हित्ती साम्राज्य पर।
और उनकी खासियत क्या है? मतलब वो कैसे अलग है?
उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो सिर्फ पुरानी किताबों या राजाओं की कहानियों पर नहीं टिके रहते। वो देखते हैं असली सबूत,
असली सबूत?
जैसे जमीन से निकली पुरातात्विक चीजें, और वो मिट्टी की पट्टिकाएं जिन पर वो अजीब सी कील वाली लिपि है ना।
क्यूनिफॉर्म,
हाँ, क्यूनिफॉर्म,
उनको पढ़ते हैं वो?
बिल्कुल। वो इन सबको मिलाते हैं, खुदाई की चीजें, लिखी हुई पट्टिकाएं, और फिर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग सोचते कैसे थे, समाज कैसे चलता था, उनकी असली ताकत क्या थी।
मतलब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि समाजशास्त्र, राजनीति, मानव विज्ञान, सब कुछ।
हाँ, बिल्कुल। उनका नजरिया मल्टीडिसिप्लिनरी है। वो हमें उन पुराने लोगों के दिमाग में झांकने में मदद करते हैं।
तो इन किताबों का ब्राइस के काम का निचोड़ क्या है? बेबीलोनिया को वो किस तरह देखते हैं?
उनका सबसे बड़ा तर्क जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि बेबीलोनिया को सिर्फ, मतलब ये मत समझिए कि वो सुमेरियन सभ्यता की एक परछाई थी
अच्छा,
या फिर बाद के साम्राज्यों के लिए बस एक जमीन तैयार करने वाली जगह। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राइस कहते हैं कि बेबीलोनिया अपने आप में एक जबरदस्त, गतिशील, नई चीजें बनाने वाली सभ्यता थी।
ये बात तो वाकई सोचने वाली है, क्योंकि आम तौर पे यही लगता है कि मेसोपोटामिया में सब कुछ सुमेर से शुरू हुआ, बाकी सब ने बस कॉपी किया।
हाँ, ब्राइस इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि बेबीलोनिया सिर्फ वारिस नहीं था, बल्कि वो सुमेरियाई विरासत का सबसे सफल इंटरप्रेटर और ट्रांसमीटर था।
इंटरप्रेटर और ट्रांसमीटर, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब उन्होंने पुरानी चीजों को लिया, उन्हें समझा, उनमें अपने हिसाब से बदलाव किए और फिर उन्हें ज्यादा असरदार तरीके से आगे बढ़ाया। वो नकलची नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के इनोवेटर थे।
और एक और छवि है बेबीलोनिया की, एक बड़ी फौजी ताकत, योद्धा राजा। क्या ब्राइस इससे सहमत है?
पूरी तरह नहीं। देखिए, वो मानते हैं कि सेना जरूरी थी, जाहिर है, लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि बेबीलोनिया की असली और टिकाऊ ताकत उसकी फौजों में नहीं थी,
तो फिर किस में थी?
स्थायी संस्थाएं बनाने में, जैसे कानून की व्यवस्था, सरकार चलाने का सिस्टम, ज्ञान को व्यवस्थित करने में, गणित, खगोल विज्ञान। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक परिष्कृत सभ्यता थी।
तो ब्राइस की किताबें हमें बेबीलोनिया की लगभग 2000 साल लंबी कहानी सुनाती हैं।
हाँ, हमुराबी के समय से लेकर जब तक वो फारसी साम्राज्य में मिल नहीं गया।
और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है।
नहीं, इससे कहीं ज्यादा। ये उस समाज के बनने, उसके बदलने, उसकी संस्कृति के विकास, उसकी सोच की कहानी है।
कैसे वो इतने लंबे समय तक बने रहे, कैसे उन्होंने बाहरी असर को झेला भी और अपनाया भी।
तो ब्राइस का मकसद है बेबीलोनिया को इतिहास में उसका सही मुकाम दिलाना।
बिल्कुल, ये दिखाना कि उसका असर सिर्फ उसी जमाने तक नहीं रहा, बल्कि यूनान, रोम और यहां तक कि आज की दुनिया पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।
चलिए, अब इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? बेबीलोन शहर से? हाँ, बेबीलोन शहर आज के इराक में, फरात नदी के किनारे। जगह बहुत स्ट्रैटेजिक थी, व्यापार के रास्ते पर, उपजाऊ जमीन के पास।
इसी वजह से वो धीरे धीरे जरूरी बनता गया होगा।
हाँ, लेकिन असली धमाका हुआ हमुराबी के साथ।
हमुराबी, ये नाम तो बहुत सुना है। लगभग 1792 से 1750 ईसा पूर्व।
सही। इन्होंने बेबीलोन को एक छोटे से राज्य से बढ़ाकर पूरे मेसोपोटामिया का बादशाह बना दिया और सबसे ज्यादा मशहूर हुए अपने कानून के लिए।
हाँ, हमुराबी की विधि संहिता, वो पत्थर का खंबा जिस पर कानून लिखे हैं।
वही। लेकिन ब्राइस हमें बताते हैं कि ये सिर्फ कानूनों की लिस्ट नहीं थी, ये मामला उससे ज्यादा गहरा था।
अच्छा, क्या था फिर ये?
ये एक तरह से न्याय की घोषणा थी, समाज में एक ऑर्डर लाने का तरीका था। और हाँ, राजा हमुराबी का एक किस्म का प्रोपेगेंडा भी था, ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं देवताओं का चुना हुआ न्याय करने वाला राजा हूँ।
और उसमें वो आंख के बदले आंख वाला सिद्धांत भी था, है ना?
हाँ था, जैसे लेक्स टैलियोनिस कहते हैं, जैसे को तैसा। लेकिन यहाँ एक पीच है।
क्या पीच?
संहिता में समाज के तीन वर्ग बताए गए हैं, अविलम यानी ऊंचे लोग, मुश्केनम यानि आम आजाद नागरिक, और वर्दुम यानि दास।
अच्छा, तो सजा इस पर निर्भर करती थी कि कौन किस वर्ग का है।
बिल्कुल, अगर एक अविलम ने दूसरे अविलम की आंख फोड़ी तो उसकी आंख फोड़ी जाएगी, लेकिन अगर उसने मुश्केनम की आंख फोड़ी तो बस जुर्माना, और दास की आंख फोड़ी तो जुर्माना और भी कम। तो न्याय तो था पर सबके लिए बराबर नहीं था।
ये जानना जरूरी है, तो हमुराबी की संहिता कानून की शुरुआत नहीं थी बल्कि,
ब्राइस के शब्दों में, ये कानून की शुरुआत नहीं बल्कि कानूनी सोच का व्यवस्थित विधि शास्त्र में परिपक्व होना दर्शाती है।
मतलब
कानून पहले भी थे पर हम्मुराबी ने उन्हें जमा किया, सिस्टम में डाला, एक स्थायी रूप दिया। ये बेबीलोनियन कानूनी सोच की मैच्योरिटी दिखाता है।
हम्मुराबी के बाद क्या हुआ? साम्राज्य टिका रहा?
हम्मुराबी के बाद थोड़ा कमजोर हुआ और फिर एक बड़ा बदलाव आया। लगभग 1595 ईसा पूर्व के आसपास बाहर से लोग आए, कसाइट, उन्होंने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया।
कसाइट, और उन्होंने कितने समय तक राज किया?
अगले करीब 400 साल तक। ये बहुत लंबा समय है।
400 साल? ये कसाइट कौन थे? क्या उन्होंने बेबीलोन की संस्कृति खत्म कर दी? अक्सर तो जीतने वाले अपनी चीजें थोपते हैं।
यही तो बेबीलोनिया की कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है। कसाइट शायद ईरान के पहाड़ों से आए थे, उनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति थी,
लेकिन
उन्होंने बेबीलोन जीतने के बाद बेबीलोनी संस्कृति को दबाया नहीं बल्कि उसे अपना लिया।
क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हुआ?
हाँ, उन्होंने बेबीलोन के देवताओं की पूजा जारी रखी, उनकी अक्कादियन भाषा और क्यूनिफॉर्म लिपि इस्तेमाल की, पुराने साहित्य को संभाल कर रखा, मंदिरों की मरम्मत करवाई।
ये तो कमाल है। मतलब बेबीलोनियन संस्कृति इतनी मजबूत थी कि जीतने वालों ने भी उसे अपना लिया।
प्राइस, इसी को बेबीलोनिया की सांस्कृतिक मजबूती और अनुकूलन क्षमता कहते हैं। शायद कसाइट राजाओं को लगा होगा कि बेबीलोनियन सभ्यता इतनी महान है कि उसे अपनाना ही उनके राज के लिए अच्छा है।
और इसी दौर में बेबीलोनिया दूसरे बड़े साम्राज्यों जैसे मिस्र और हित्ती के साथ बराबरी पर डिप्लोमेसी भी कर रहा था।
हाँ बिल्कुल, हमें मिस्र में मिले अमरना पत्रों से इसका पता चलता है। तो ये कोई अंधेरा युग नहीं था बल्कि स्थिरता और संस्कृति को बचाने का समय था।
तो बेबीलोनिया की असली ताकत उसकी संस्कृति और लचीलेपन में थी, सेना से भी ज्यादा।
हाँ, ब्राइस का एक कोटेशन है जो ये बात बहुत अच्छे से कहता है, बेबीलोन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेनाएं नहीं बल्कि विदेशी को परिचित और प्राचीन को प्रासंगिक बनाने की क्षमता थी। वो नए लोगों, नए विचारों को अपने सिस्टम में मिला लेते थे।
कसाइट शासन के बाद क्या हुआ? क्या बेबीलोनिया फिर से शक्तिशाली बना?
काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर लगभग 626 ईसा पूर्व में नव बेबीलोनियन साम्राज्य का दौर आया और इसने बेबीलोनिया को उसकी पुरानी शान वापस दिलाई।
और इस दौर का सबसे मशहूर राजा
नबुकदनेस्सर II, 605 से 562 ईसा पूर्व तक।
नबुकदनेस्सर II, इनका नाम तो बाइबल में भी आता है, यरूशलेम पर कब्जा, यहूदियों को बंदी बनाना।
बिल्कुल, वो एक ताकतवर योद्धा थे, लेकिन उनका नाम बेबीलोन शहर को शानदार बनाने के लिए भी याद किया जाता है।
उन्होंने शहर के लिए क्या किया?
उन्होंने शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी दोहरी दीवारें बनवाई, मशहूर इश्तर गेट बनवाया, वो नीली चमकदार ईंटों वाला जिस पर जानवरों की तस्वीरें हैं।
हाँ, जिसके कुछ हिस्से बर्लिन म्यूजियम में है शायद।
वही, और उन्होंने एक बहुत ऊंचा मंदिर ज़िगुरेट बनवाया। माना जाता है कि उसी से बाबेल की मीनार की कहानी निकली होगी। उनके जमाने में बेबीलोन दुनिया का सबसे भव्य शहर था।
तो ये तो ही इमारतें और युद्ध।
बिल्कुल,
लेकिन ज्ञान विज्ञान का क्या? दिमागी तौर पर क्या चल रहा था बेबीलोनिया में?
अरे, जबरदस्त काम चल रहा था। ये वो पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तो लिखना, क्यूनिफॉर्म लिपि।
हाँ, वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर कील जैसी लिखाई।
बिल्कुल, ये सुमेर से मिली थी, पर बेबिलोनियन लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हजारों ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिनसे हमें उनके बारे में इतनी जानकारी है।
और गणित, सुना है गणित में वो बहुत आगे थे।
बहुत ज्यादा। उन्होंने एक अनोखी नंबर सिस्टम बनाई जो 60 पर आधारित थी, सेक्साजेसिमल सिस्टम।
सेक्साजेसिमल, 60 पर आधारित।
हाँ, और सोचिए, इसका असर आज तक है। हमारी घड़ी में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड, सर्कल में 360 डिग्री, ये सब कहाँ से आया?
बेबिलोनिया से, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
वाकई, वे सिर्फ गिनना नहीं जानते थे, बल्कि काफी मुश्किल गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। वर्क समीकरण, क्षेत्रफल, आयतन निकालना, कमाल की गणितीय क्षमता थी।
और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी,
वो उनकी एक और बड़ी देन है। शुरू में ये ज्योतिष से जुड़ा था। वो मानते थे कि आसमान में तारों और ग्रहों की चाल देवताओं का संदेश है।
अच्छा, मतलब भविष्य जानने के लिए।
हाँ, शुरू में यही मकसद था, लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत ध्यान से और सिस्टमैटिक तरीके से आसमान को देखा और उसका रिकॉर्ड रखा।
और इस रिकॉर्ड रखने का नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वो आसमान की घटनाओं के पैटर्न समझने लगे। वे इतने सटीक हो गए कि भविष्यवाणी कर सकते थे कि चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण कब होगा।
अरे वाह, ये तो ज्योतिष से आगे बढ़कर विज्ञान हो गया।
बिल्कुल, ये गणित पर आधारित वैज्ञानिक खगोल विज्ञान की शुरुआत थी, और उनका ये सारा ज्ञान बाद में यूनानियों तक पहुंचा और पश्चिमी खगोल विज्ञान की नींव बना। सोचिए कितनी मेहनत और धैर्य का काम था ये।
क्या उन्होंने सिर्फ हिसाब किताब और तारों की चाली लिखी, या कुछ साहित्य भी था?
नहीं, साहित्य भी था, बहुत समृद्ध। सबसे मशहूर है गिलगमेश का महाकाव्य।
हाँ, ये नाम सुना है।
ये दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक है, राजा गिलगमेश और उसके दोस्त एंकिडू की कहानी। इसमें दोस्ती, नुकसान, मौत का डर, अमरता की तलाश, ऐसे विषय हैं जो आज भी हमें छूते हैं।
और समाज कैसा था, आम लोग कैसे जीते थे?
जैसा हमने हम्मुराबी के कानून में देखा, समाज बटा हुआ था, अमीर लोग, आम नागरिक और दास। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर थी, जौ, गेहूं, खजूर, सिंचाई के लिए नहरें थीं, लेकिन व्यापार भी बहुत अहम था।
क्या वे हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे?
हाँ, वे रिकॉर्ड रखने में उस्ताद थे। जमीन की खरीद फरोख्त, कर्ज का लेन देन, व्यापार के सौदे, शादी के कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था।
इससे तो उनके रोजमर्रा के जीवन की बहुत अच्छी तस्वीर मिलती होगी।
जबरदस्त, ये दिखाता है कि वो कितने व्यवस्थित और डॉक्यूमेंट आधारित समाज थे।
इतना शक्तिशाली व्यवस्थित साम्राज्य, फिर इसका अंत कैसे हुआ?
अंततः 539 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस महान ने बेबीलोन पर हमला किया और जीत लिया।
ओह, तो ये बेबीलोनिया का अंत था?
यहीं पर ब्राइस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बेबीलोनिया का अंत नहीं था, बल्कि उसका रूपांतरण था।
रूपांतरण मतलब?
मतलब राजनीतिक आजादी तो खत्म हो गई, लेकिन बेबीलोन शहर फारसी साम्राज्य में, फिर सिकंदर महान की यूनानी साम्राज्य में भी एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सेंटर बना रहा।
तो कहानी 539 ईसा पूर्व में खत्म नहीं हुई?
नहीं, बल्कि ब्राइस का एक और दिलचस्प विचार है। बेबीलोन का पतन एक सभ्यता का अंत नहीं, बल्कि उसके सबसे व्यापक प्रभाव की शुरुआत थी।
प्रभाव की शुरुआत, ये कैसे?
इसका मतलब है कि जब बेबीलोन की राजनीतिक ताकत खत्म हो गई, तब उसके विचार, खासकर गणित, खगोल विज्ञान, कानून, दूसरी सभ्यताओं के जरिए और ज्यादा फैले। फारसी, यूनानी, उनका असली असर उनकी राजनीतिक मौत के बाद दुनिया पर पड़ा।
वाओ, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो चलिए इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालते हैं। क्या बड़े सबक हैं बेबीलोनिया से?
जरूर, पहला तो है कानूनी और शासनिक नवाचार। हम्मुराबी की संहिता, लिखित कानून, न्याय का सिस्टम बनाने की कोशिश, राजा की जिम्मेदारी, ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, आज भी हमारे कानून लिखे हुए होते हैं, सबूतों पर आधारित होते हैं, ये सोच कितनी पुरानी है।
दूसरा, सांस्कृतिक लचीलापन और अनुकूलन। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कैसे उन्होंने बाहरी लोगों और विचारों को न सिर्फ झेला, बल्कि अपनी संस्कृति में मिला लिया, उसे और मजबूत बनाया।
ये थोड़ा थोड़ा भारत जैसा लगता है, जहाँ इतनी सारी संस्कृतियां आकर मिली हैं।
बिल्कुल। तीसरा, बौद्धिक उपलब्धियां और ज्ञान का प्रसार। गणित, खगोल विज्ञान, ये सिर्फ उनकी अपनी उपलब्धि नहीं रही, बाद की पीढ़ियों के लिए, दूसरी सभ्यताओं के लिए नींव बनी। ज्ञान कैसे सफर करता है, जैसे भारत के शून्य ने किया।
और चौथा,
निरंतरता और परिवर्तन में संतुलन। लगभग 2000 साल तक एक बड़ी सभ्यता बनी है ना, ये दिखाता है कि वो परंपरा और बदलाव के बीच बैलेंस बना पाए। ये किसी भी समाज या संगठन के लिए बड़ा सबक है।
ब्राहिस्टी कुछ यादगार विचारों से इन बातों को और पक्का करते हैं। पहला, बेबिलोनिया केवल सुमेरियन सभ्यता का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि उसका सबसे सफल व्याख्याकार और प्रेषक था।
हाँ, उनकी सक्रिय भूमिका। दूसरा, हम्मुराबी पर। हम्मुराबी की संहिता कानून की शुरुआत नहीं, बल्कि कानूनी सोच का व्यवस्थित विधि शास्त्र में परिपक्व होना दर्शाती है।
तीसरा, उनकी सांस्कृतिक ताकत पर। बेबिलोन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेनाएं नहीं, बल्कि विदेशी को परिचित और प्राचीन को प्रासंगिक बनाने की क्षमता थी।
और चौथा, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, बेबिलोन का पतन एक सभ्यता का अंत नहीं, बल्कि उसके सबसे व्यापक प्रभाव की शुरुआत थी, विचारों का फैलाव।
तो ये सब जान के क्या लगता है, बेबिलोनिया का अध्ययन आज हमारे किस काम आ सकता है? कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन?
मुझे लगता है बहुत। पहला तो शासन और कानून में लिखित नियमों का महत्व, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सिद्धांत आज भी जरूरी हैं।
और आज की दुनिया में जहां इतनी संस्कृतियां मिल रही हैं, उनका सांस्कृतिक एकीकरण का मॉडल कैसे बाहरी समूहों को शामिल करके भी पहचान बनाए रखी?
हाँ, ये आज के मल्टीकल्चरल समाजों के लिए बहुत प्रासंगिक है, और उनकी ज्ञान प्रणाली, व्यवस्थित अवलोकन, रिकॉर्ड रखना, ये तरीका आज भी साइंटिफिक रिसर्च, डेटा एनालिसिस, यहाँ तक कि अच्छी पढ़ाई के लिए भी जरूरी है।
और बेबिलोन जैसे बड़े शहर का प्रबंधन, पानी, अनाज, कानून व्यवस्था, ये सब शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग की चुनौतियां थीं जिनसे आज के शहर भी जूझ रहे हैं। शायद उनके अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं।
बिल्कुल।
तो अंत में बेबिलोनिया से सबसे बड़ा सबक क्या लेकर जाएं? आपके लिए क्या है?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी सभ्यता की असली महानता सिर्फ फौजी ताकत या ऊंची इमारतों में नहीं होती। असली महानता होती है टिकाऊ और लचीले संस्थान बनाने में, अलग अलग संस्कृतियों को साथ लाने में, और ऐसा ज्ञान बनाने में जो वक्त के साथ टिका रहे। विचार और अनुकूलनशीलता ही असली ताकत हैं।
मैं सहमत हूँ, और ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आज के जीवन के कितने सारे पहलू, कानून, विज्ञान, समय का विभाजन, कहीं ना कहीं बेबिलोनिया की जमीन से जुड़े हैं। हमें उन्हें सिर्फ पुरानी कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक जटिल, परिष्कृत और प्रभावशाली सभ्यता के रूप में देखना चाहिए।
हाँ, जिसने उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जो आज भी हमारे सामने हैं।
एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। बेबिलोनिया की कहानी हमें कैसे सिखाती है कि किसी सभ्यता का असली और स्थायी प्रभाव अक्सर उसकी राजनीतिक शक्ति के समाप्त होने के बाद उसके विचारों, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासतों के माध्यम से दुनिया में फैलता है। क्या आज की दुनिया में भी शक्तिशाली विचारों का प्रभाव देशों की सीमाओं और राजनीतिक ताकतों से ज्यादा स्थायी होता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।